अब जरा तूफान के आने का मंजर देखिएगा आंखों से। यहां तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और तंदूर उबल पड़ा तो हमने कहा, हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में रख लो और अपने घर वालों को भी। यहाँ देखिए असबाब सिखाए जा रहे हैं कि देखो अब सब में से जो अच्छे अच्छे लोग हैं इनको ले लो, सिवाय इन अशखास के जिनकी निशानदेही पहले से की जा चुकी है, इसमें सवार करा दो और इन लोगों को भी बिठा लो जो ईमान लाए हैं। और थोड़े ही लोग थे जो नूह के साथ ईमान लाए थे, थोड़े ही लोग थे। तो क्या नूह कामयाब थे कि नाकाम? कामयाब थे। नूह ने कहा, सवार हो जाओ, इसमें अल्लाह ही के नाम से है, इसका चलना भी और इसका ठहरना भी, मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है। इस पारे की दुआओं में से एक दुआ। कश्ती इन लोगों को लिए चली जा रही थी और एक एक मौज पहाड़ की तरह उठ रही थी। नूह का बेटा दूर फासले पर खड़ा था, आयाते तदब्बुर है इस बारे की। नूह ने पुकार कर कहा, बेटा हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों के साथ ना रह। यानी नूह ने पूरी कोशिश की कि जो दावत और जो पैगाम बाहर वालों को दिया बेटे को भी दे, और बेटे को तो कितने डर से दिया होगा। उसने पलट कर जवाब दिया, मैं अभी एक पहाड़ पर चढ़ जाता हूं जो मुझे पानी से बचा लेगा। मादा परस्त था, मटीरियलिस्टिक अप्रोच थी बेटे की। उसने कहा, बाप की कश्ती तो टूटी फूटी है, इसमें क्या तो डूबूंगा, ऊंचे पहाड़ पे जाऊंगा। आज भी यही कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है इंसानियत को, अपने असबाब के साथ दुनिया में जियो। खैर, उसने पलट कर जवाब दिया। नूह ने कहा, आज कोई चीज अल्लाह के हुक्म से बचाने वाली नहीं है, ये है अकीदा, सिवाय इसके कि अल्लाह ही किसी पर रहम फरमाए। इतने में एक मौज दोनों के दरमियान हायल हो गई और वो भी डूबने वालों में शामिल हो गया, और नूह का बेटा नूह की आंखों के सामने डूब गया। कितनी ही बातें इसमें आपके मेरे गौर व फिक्र की। पहली बात देखिए कि बेटा तो कहीं भी डूब सकता था, कोई जरूरी था कि नूह को दिखाया जाए और डुबोया जाए? ज्यादा दुख हुआ होगा ना, खबर मिल जाए कोई मर गया और बात है, और अल्लाह ना करे हाथों में दम तोड़े कोई, ये बात तो भूलती नहीं। क्या सिखाया? अल्लाह हू अकबर, कि तुम 950 साल मेरे दीन के काम करके भी इतना मेरे ऊपर जोर नहीं रखते कि तुम्हें इस सदमे से महफूज रखूं। हम कहते हैं फलां बड़ा पहुंचा हुआ है, बड़ा अल्लाह का प्यार है, अब उसको कोई गम नहीं आना, अल्लाह ने दिखा दिया। दूसरी बात आप देखिए कि इसमें क्या पता चलती है, कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे को कश्ती में सवार करने की दावत दी, बेटे ने कबूल ना की। वजह क्या है? सोहबत बुरी थी। तो याद रखिए, वो एक शेर भी है फारसी का, कि नूह का बेटा क्यों ना हो, यानी नबी का बेटा क्यों ना हो, तो बुरी सोहबत उसको भी बिगाड़ देती है। तो मुझे आपको भी अपनी औलादों की सोहबत पे नजर रखनी है, अच्छे दोस्त अच्छी कंपनी होगी, इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ देंगी, अल्लाह ताला उनको दीन पे रखेगा। तो अपने बच्चों की कंपनी बदलें। और एक और बात, कि अगर आज मैंने आपने मेहनत ना की तो हमारी भी नस्लें कहीं डूब ना जाएं। वो तो एक बेटा डूबा था, आज तो कितनी नस्लें हैं, और किस चीज ने डुबोया? मादा परस्ती ने। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी नजरें मेटीरियलिस्टिक चीजों से उठकर अल्लाह ताला पर लग जाएं। हुक्म हुआ है, जमीन अपना सारा पानी निगल जा और ए आसमान रुक जा। इसको समझ लें, जब अल्लाह फैसले करता है ना हमारे हक में खैर के, तो ऐसे होता है 6 महीने तक बारिश होती रही और एक हुक्म आता है। क्या कहा अल्लाह ने जमीन को? यार जब लाई निगलने माओ की अपने पानी को, जमीन ने सारा पानी निकलना शुरू किया। आसमान से कहा, अकली रुक जा रुक जा। नतीजा क्या निकला? वगीज अल माओ। तो आज भी मुसलमान को इस आयत पे अमल गौर करना है, जब अल्लाह ने आपकी मेरी मदद करनी है ना, हमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होगा, अल्लाह के हुक्म से सारे फितनों के तूफान थप जाएंगे। चुनाचे पानी जमीन में बैठ गया, फैसला चुका दिया गया, कश्ती जूदी पर टिक गई और कह दिया गया, दूर हुई जालिमों की कौम, खसकम जहां पाक। फारसी में कहते हैं, बेकार चीजें निकली और दुनिया पाक। वो धरती का गंध था जो अल्लाह ने इस पानी की नजर में खत्म कर दिया। क्या पता चला कि अल्लाह के यहाँ कीमत अमल की है, नसब की नहीं है। बाप नूह है, बेटा डूब रहा है, मामला पहाड़ या कश्ती का नहीं था, मामला अल्लाह के हाथ में था। तो आज मैंने और आपने अल्लाह के ऊपर इंशाल्लाह नजरें रखनी है, फिर फायदा होगा। वनादा नूह रब्बहू फकाल रब्बी नबनी मिन अहली। नूह ने अपने रब को पुकारा और कहा है, ऐ रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा सच्चा है, तू सब हाकिमों से बड़ा और बेहतर हाकिम है। अल्लाह अकबर, यानी कि अल्लाह तूने कहा था मैं तेरे घर वालों को बचा लूंगा, तो मेरा बेटा क्यों डूब गया? एक मोहब्बत भरा शिकवा जुबान पे आ गया, जवाब सुनिएगा। जवाब मेरे शाद हुआ है, नूह वो तेरे घर वालों में से ही नहीं है। अल्लाह अकबर, इन्नहु लैस मिन अहलिक, वो तो तेरा तुख्म ही नहीं, वो तो तेरा है ही नहीं। ये नहीं कहा कि है तेरा पर नाफरमान है। क्या पता चला कुफर और ईमान का रिश्ता कट जाता है। वो तो एक बिगड़ा हुआ काम है, बस तू इस बात की मुझसे दरख्वास्त ना कर जिसकी हकीकत तू नहीं जानता। मैं तुझे नसीहत करता हूं कि अपने आप को जाहिलों की तरह ना बना ले। नूह ने फौरन अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इससे कि वो चीज तुझसे मांगू जिसका मुझे इल्म नहीं। दूसरी दुआ, अगर तूने मुझे माफ ना किया और रहम ना फरमाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यानी नूह ने बेटे का डूबना गवारा कर लिया, लेकिन अल्लाह की निगाहों से गिरना कबूल ना किया, गुस्सा नहीं किया, वहां पाँव नहीं पटके। इतनी खिदमात अल्लाह जी मैंने आपके दीन की की, आपने मेरा एक बेटा ही नहीं बचाया। छोड़े आप तो ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं, काम पे नजर रखी, काम करते गए। और कह लीजिए कि तूफाने नू क्यामत सुग्रा का एक दूसरा नाम है। कैसे पूरी दुनिया में एक क्यामत आ गई। अल्लाह अपने नबी से फरमाते हैं इसके बाद ये तो सब हुआ, हुक्म हुआ है नूह उतर जा, हमारी तरफ से सलामती और बरकतें हैं तुझ पर और इन गिरोहों पर जो तेरे साथ हैं, और कुछ गिरोह ऐसे भी हैं जिनको हम कुछ मुद्दत सामान्य जिंदगी बख्शेंगे, फिर इन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। तो यहाँ कौम नूह का किस्सा पूरा हुआ। कहानी सुनाने के दौरान ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया गया, ऐ नबी, ये गैब की खबरें हैं क्या जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं? इससे पहले ना तो आप इनको जानते थे और ना आपकी कौम, बस सब्र करो, इंजामे कार मुत्तकियों ही के हक में। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें तकवा अता फरमाए। अगली कौम कौम आद है, जिसके तरफ नबी हूद अलैहिस्सलाम भेजे गए थे। फरमाया नबी का पैगाम, व इला आद नखाहुम खुदन काल या कौमे बुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरु, और आद की तरफ हमने इनके भाई हूद को भेजा, उसने कहा ऐ बिरादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई खुदा उसके सिवा नहीं, तुमने महज झूठ घड़ रखे हैं। देखिए नबियों की दावत का आगाज अकीदे से क्यों होता था? हर नबी की दावत के शुरू में यही बात है ना, वजह पहले जड़ों पर काम करना चाहिए। जड़ें सेहतमंद होंगी ना, फिर पत्ते दरख्त टहनियां खुद ब खुद सेहतमंद होंगी। बाज लोग दीन के नाम पे तबलीग कैसी करते हैं, जाके पत्तों को झाड़ने लगते हैं। कबूल कर लें जो अल्लाह ने आपको दिया है, आपको अल्लाह ताला ने जिस चीज के लिए तैयार किया आप वो करें, और वो क्या है, लोगों को अल्लाह से जोड़ें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये दावत आपको मुझे भी यही सिखा रही है, और वो क्या कि लोगों को अल्लाह से जोड़ दीजिए। फिर कहा जो कुछ तुमने इसके सिवा है वो क्या है, वो तो महज झूठ खड़ रखे हैं। ऐ बिरादराने कौम, इस काम पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, मेरा अजर तो इसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया, क्या तुम अकल से जरा काम नहीं लेते? और ऐ मेरी कौम के लोगो, अपने रब से मुआफी चाहो, फिर इसकी तरफ पलटो, वो तुम पर आसमान के धाने खोल देगा और तुम्हारी मौजूदा कुव्वत पर मजीद कुव्वत का इजाफा करेगा। मुजरिम बनकर बंदगी से मुंह ना फेरो। क्या पता चला, तौबा की दावत दी, पिछले गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे अगले आसान कर देगा। इसी तरह से आप देखिए कि यहाँ ये बात समझ आती है कि पिछले गुनाहों पे माफी मांगते रहना चाहिए। क्या पता हमारा कोई पिछला गुनाह हमसे आज नेकी का तौफीक छीन ले। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में गालिबन आता है इब्ने उमर के, एक रात तहज्जुद छुट गई तो सुबह उठ के रोने लगे, कहने लगे मेरा न जाने कौन सा गुनाह जिसने मुझसे तहज्जुद छुड़वा ली। तो नेकियों की तौफीक के लिए लाजमी है कि पिछले गुनाहों पे माफी मांगते रहे। जवाब सुनिए कौम का, उन्होंने जवाब दिया, खुद तू हमारे पास कोई सरीक शहादत लेकर नहीं आया, और तेरे कहने से हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ सकते, और तुझ पर हम ईमान लाने वाले नहीं। ढीठपन देखिए जिसको, आपके कितने यकीन से अपने बातिल पे पक्के जमे हुए हैं। हम तो ये समझते हैं कि तेरे ऊपर हमारे माबूदों में से किसी की मार पड़ गई है, नाउज़ुबिल्लाह। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह की शहादत पेश करता हूँ और तुम गवाह रहो कि ये जो अल्लाह के सिवा तुम दूसरों को खुदाई में शरीक कर चुके हो, मैं इससे बेजार हूँ। तुम सब के सब मेरे खिलाफ मिलकर अपनी करनी में कोई कसर ना उठा रखो, मुझे जरा मोहलत ना दो। मेरा भरोसा अल्लाह पर है, वो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी इसके हाथ में ना हो। यहां भी देखिए हजरत हूद का तकदीर पर ईमान कितना क्लियर कट नजर आता है। कैसे? क्योंकि उनको यकीन था कि सब मिलकर भी मेरे बाल का भीका नहीं कर सकते अगर मेरा रब ना चाहे। बेशक मेरा रब सीधी राह पर है, अगर तुम मुंह फेरते हो तो फेर लो। जो पैगाम देकर मैं तुम्हारे पास भेजा गया हूँ वो मैं तुमको पहुंचा चुका हूँ। बस मेरा काम पैगाम देना तो वो दे दिया। अब मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरी कौम को उठाएगा और तुम इसका कुछ न बिगाड़ सकोगे। जरा सा सोचिए इस पे चंद सेकेंड। नबी भी पैगाम देकर जा चुके, आज उम्मत मुस्लिमा तक पैगाम पहुंचा हुआ है अल्लाह के हुक्म से। जो नहीं मानेगा अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यकीनन मेरा रब हर चीज पर निगरान है। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने अपनी रहमत से हूद को और इन लोगों को जो इसके साथ ईमान लाए थे निजात दी और एक सख्त अजाब से इनको बचा लिया। यानी कौम की पकड़ का दिन नबियों और ईमान वालों की निजात का दिन होता था। ये हैं आद, अपने रब की आयात से उन्होंने इनकार किया, इसके रसूलों की बात न मानी और हर जब्बार दुश्मन हक की पैरवी करते रहे। आखिरकार इस दुनिया में भी इन पर फिटकार पड़ी और क्यामत के रोज भी। सुनो आद ने अपने रब से कुफर किया, सुनो दूर फेंक दिए गए आद, हूद की कौम के लोग। आपको इसमें गुस्सा नजर आ रहा है? कैसे जब पैगाम पहुंच जाने के बावजूद कौमें ना मानी तो अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो गई। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे नबी के तौर तरीकों पर अमल करने वाला बना दे और अल्लाह ताला की तरफ से इस किस्म की फिटकार से हमें बचा ले। तीसरी कौम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ भेजे गए। वइला समूद अखाहुन सालेहा, और समूद की तरफ हमने इनके भाई सालेह को भेजा। उन्होंने कहा मेरी कौम के लोगों अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं। सब की कॉमन दावत, ये है सब नबियों की दावत, जिसको आज की जुबान में आप कहते हैं फ्रेंचाइजेशन। आप इसको भी समझिएगा, आप देखिए कि एक ही दावत ऑलमोस्ट रिस्पॉन्स भी एक ही जैसा और अल्हम्दुलिल्लाह इंजाम भी सबका खूबसूरत। यही काम करने का तरीका होता है। अच्छे काम का एक स्टैंडर्ड सेट करें, फिर उस पर जम जाए, फिर उसके मुताबिक तैयारी करें और काम पे लग जाए। जब आप किसी काम के अंदर स्टैंडर्ड में कमी करते हैं नताइज बदल जाएंगे। बज़ाहर कौमों ने नहीं माना अक्सर रसूलों को, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हर नबी की कौम के बाद वाक्य में आखिर में क्या आ रहा है? ना मानने वाले नाकाम, मानने वाले कामयाब। अल्लाह ताला हमें मानने वालों में करते। फरमाया ए मेरी कौम के लोगों अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं। वही है जिसने तुमको जमीन पर पैदा किया और यहां तुमको बसाया, बस तुम इससे माफी चाहो और इसकी तरफ पलट आओ। यकीनन मेरा रब करीब है और वो दुआओं का जवाब देने वाला है। नबियों ने अल्लाह की सिफात बताकर लोगों को अल्लाह से जोड़ा। उन्होंने कहा साले इससे पहले तो तू हमारे दरमियान ऐसा शख्स था जिससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी। इसको भी नोट कर लें, लोगों को बहुत ज्यादा तवक्कुआत होती थी नबियों से। क्यों? कि नबी क्रीम ऑफ द सोसाइटी होते थे, अखलाक में, किरदार में, नसब में, नाते में। कभी भी नबी थर्ड क्लास लोगों में नहीं आए। किरदार के एतबार से बड़े आला लोग होते थे उस सोसाइटी में, उस माशरे में उनकी बड़ी इज्जत होती थी। लेकिन अब तुमने क्या किया, तुम तो मुल्ला बन गए। आज भी लोग कहते हैं ओह तुम पे तो हमारी बड़ी नजरें थी, तुमने क्या कर लिया, तुम तो बहुत अकलमंद थे। तो नबियों को अल्लाह ताला ने एक खास खूबी दी होती थी जिसका इजहार कौमों ने किया। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वाले क्या कहते थे, सादिक और अमीन। तो क्या पता चला कि नबियों का काम करना है तो हमें भी अपने किरदार को ऊपर करना पड़ेगा। वो सारी खूबियां अपने अंदर लाने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह कि जिससे अल्लाह ताला की मदद आती है। उन्होंने कहा सवाल इससे पहले तू हमारे दरमियान ऐसा शख्स था जिससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी, क्या तू हमें इन माबूदों की परस्तिश से रोकना चाहता है जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे? तो जिस तरीके की तरफ हमें बुला रहा है इसके बारे में हमको सख्त शुबा है, शक शुबा, जिसने हमें हिलजान में डाल रखा है। हर कौम ने देखिए मुख्तलिफ वजह से नबी की दावत को नहीं माना। हजरत सवाल के बारे में शुबे थे, क्यों थे भला? कहते थे ये ठीक शख्स नहीं है, या ये जिस चीज की दावत दे रहा है वो काम ठीक नहीं है। अब नबी को तो गुस्सा आना चाहिए था ना, कोई गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि जवाब देखिए कितना ठंडा। फिर वही बात, मुखबित होने का अमली सबूत। साले ने कहा, ए बिरादराने कौम, तुमने कुछ जरा इस बात पर गौर किया? अगर मैं अपने रब की तरफ से एक साफ शहादत रखता था और फिर इसने अपनी रहमत से भी मुझको नवाज दिया, तो इसके बाद अल्लाह की पकड़ से मुझे कौन बचाएगा अगर मैं इसकी नाफरमानी करूं? हाईलाइट किया, देखिए ये कितना प्यारा नुक्ता है। आपको मुझे कुरान मिल गया, अल्लाह ने दीन की थोड़ी बहुत समझ दी। अब कोई हमें गलत चीज की तरफ बुलाए तो मैंने आपने भी यही जवाब देना है कि अगर मैंने तुम्हारे कहने पे गलत काम कर लिया तो बताओ क्या तुम मुझे अल्लाह की पकड़ से बचा सकते हो? तुम मेरे किस काम आ सकते हो सिवाय इसके कि मुझे और ज्यादा खसारे में डाल दो? और ये मेरी कौम के लोगों, देखो ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, इसे अल्लाह की जमीन में चरने के लिए आजाद छोड़ दो, इससे जरा तारुस ना करना और ना कुछ ज्यादा देर गुजरेगी, वरना कुछ ज्यादा देर ना गुजरेगी कि तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। मगर उन्होंने ऊंटनी को मार डाला। इस पर सालेह ने इनको खबरदार कर दिया कि बस अब 3 दिन तक अपने घरों में और रह बस लो, और ये कैसी मियाद है जो झूठी साबित ना होगी। ये ऊंटनी का क्या किस्सा है? कौम ने मुआवजा मांगा, ऐसे ही अनयूजल, जैसे वो कहते हैं ना शोबदाबाजी। वो फलां चट्टान है, छोटी एक चट्टान थी, कातिबा उसका नाम आता है, अलबिदार नहाया में मैंने खुद पढ़ा। कहते थे इस चट्टान के अंदर से एक ऊंटनी निकले जो प्रेग्नेंट हो, फिर हमारी आंखों के सामने वो बच्चा जने तो हम मान जाएंगे तुम नबी हो। भाई नबी ने कहा था मैं जादूगर हूं, ऐसे शोबदे दिखाता हूँ, लेकिन देखिए अल्लाह ने उनके कहने पर यह कर दिया। ये सब हुआ, इतनी मोटी ताजी ऊंटनी एक पहाड़ के अंदर से निकली, और अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? जो माँ के पेट को फाड़ के बच्चा निकाल सकता है वो पहाड़ से नहीं निकाल सकता। सब हुआ, डर गए, दब गए, कहा बहुत अच्छा शुक्रिया आप जी, हम आपको नबी मानते हैं। अब क्या हुआ जरा सा सोचिएगा। वो ऊंटनी खाती पीती, जा रहा कि वो इन जागती थी, जिधर से गुजरती इनके जानवर भाग जाते कौम के। पानी पीने जाती, सारे चश्मे का पानी पी जाती, दूसरों को पानी ना मिलता। खेतियों की खेतियां चरती, 2-4 दिन तो सब्र किया, अब परेशान हो गए। असल में ये उस शख्स की मिसाल है कि जो खुद पहले कोई मुआवजा मांगे फिर उसके तकाजे पूरे ना कर सके। बास दफा हम नेकी के मौके मांगते हैं लेकिन बाद में वो हमारे लिए सवाले की ऊंटनियां बन जाते हैं। इसमें मैंने एक आर्टिकल भी कहीं पढ़ा था, किसी ने कहा ये पाकिस्तान का बनना भी एक ऊंटनी है सवाले की, आज हम उसके तकाजे ही नहीं पूरे कर पा रहे। तो याद रखिए खुशकिस्मत है वो लोग जिनको अल्लाह उनके मुतालबों पे वो नेमते दे दे जो मांगते थे, तो फिर उसके तकाजे पूरे कीजिए, वरना याद रखिए कि फिर पकड़ बड़ी सख्त होगी। यही हुआ इस कौम के साथ। कैसे? आखिरकार जब हमारे फैसले का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से सालेह को और इन लोगों को जो इनके साथ ईमान लाए थे बचा लिया, और इस दिन की रुसवाई से उनको महफूज रखा। बेशक तेरा रब ही दरअसल ताकतवर और बालादस्त है। रहे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया था तो एक सख्त धमाके ने इनको धर लिया, यानी इन्होंने खुद फिर उस ऊंटनी को मारने की कोशिश की और कत्ल की कोशिशें की हजरत सालेह के, और वो अपनी बस्तियों में से इस तरह बेहिसो हरकत पड़े के पड़े रह के गोया वो कभी वहां बसे ही ना थे। ऐसे अल्लाह ताला नाम खत्म कर देता है ऐसे लोगों के। तो याद रखिए कि ये वो चीजें हैं कि जिसको पढ़ने के दौरान आपको मुझे उन नबियों के हालात से आगही के बाद इस चीज की भी फिक्र लग जानी चाहिए कि आज अपनी जिंदगी में क्या हम नबियों के रास्ते पे चल रहे हैं या उनके कौमों के रास्तों पे जो झुटलाने वाले हैं। कमेंट वही है कौमे समूद पे भी जो पिछली कौमों पे था, क्या सुनो समूद ने अपने रब से कुफर किया, सुनो दूर फेंक दिए गए समूद, अल्लाह ताला ने उनको अपनी रहमत से दूर कर दिया। और देखो इब्राहिम के पास हमारे फरिश्ते खुशखबरी लिए हुए पहुंचे, कहा तुम पर सलाम हो। नोट कीजिए फरिश्ते भी सलाम करते हैं, हमें भी अल्लाह ताला ने सलाम का एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता दिया है, और वो क्या है कि वक्ते मुलाकात अस्सलाम वालेकुम कहना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया तुम पर भी सलाम हो। फिर कुछ देर ना गुजरी कि इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा इनकी जियाफत के लिए ले आए। ये क्या पता चला? खातर मदारत, नबियों का इख्लाक है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि मेहमान की इज्जत करो, खातर करो। कैसे? फौरन ले आए, पूछा नहीं क्या खाएंगे, अच्छा खा के ही आए होंगे, चाय तो आप पीते नहीं, ठंडा पिएंगे नहीं, मीठे से आपको शुगर हो जाएगी, नमकीन से ब्लड प्रेशर आई होगा, चलो बैठते हैं। अच्छा इखलाक है, फरमाए 3 दिन तक जो मेहमान को खिलाते हो वो जियाफत है, उसके बाद जो खिलाओगे वो सदका है। कभी आपने, मैंने इस एंगल से मेहमान नवाजियां की, लेकिन हम बाजो मेहमान नवाजी में अगले को शर्मिंदा कर देते हैं। क्या लगता है, ना कभी खाया था, ना आइंदा इसको कभी मिलना है, आज इसको इतना रखवा दो इसके आगे। तो मेहमान नवाजी के बड़े खूबसूरत आदाब है। वैसे तो हमारे कल्चर में मेहमान नवाजी हद से बड़ी हुई है, लेकिन ये है कि कुछ कल्चर ऐसे भी हैं कि जहाँ बहुत सर्द मेहरी होती है। तो यहां से इशारा मिलता है कि हजरत इब्राहिम ने मेहमान नवाजी की, यहां तक रिवायत में आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाते ही नहीं थे जब तक उनके साथ कोई मेहमान नहीं था होता। खैर आगे देखते हैं। अब मेहमान के सामने खाना रखा, खाना वो खा नहीं रहे, फिर कुछ देर ना गुजरी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक भुना हुआ बछड़ा इनकी जियाफत के लिए ले आए। मगर जब देखा कि इनके हाथ खाने की तरफ बढ़ते नहीं, तो वो इनसे शुबे में पड़ गए और दिल में इनसे खौफ महसूस करने लगे। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम तो लूत की कौम की तरफ भेजे गए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी भी खड़ी हुई थी, वो ये सुनकर हंस दी। फिर हमने उसको इसहाक और इसहाक के भाई याकूब की खुशखबरी दी। वो बोली, हाय मेरी बकमबख्ती, क्या मेरे यहाँ औलाद होगी जबकि मैं बुढ़िया भूस हो गई और मेरे मियाँ भी बूढ़े हो चुके, ये तो बड़ी अजीब बात है। बुढ़ापे में औलाद, यहां आप जरा सा नोट करिए, तकदीर के साथ क्या नुक्ता है इसका। एक इंसान एक उम्र तक बच्चे की उम्मीद रखता है, फिर मायूस हो जाता है। वो कहता है, होती तो हो चुकी होती, अल्लाह कहता है, नहीं, जहां मेरी तकदीर आती है वहां तुम्हारी तदबीर पीछे चली जाती है। बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीबी सारा थी उस वक्त उनकी बीवी, उनको खुशखबरी क्या दी, क्या कहने लगी कि मेरे मियाँ तो बूढ़े हो चुके हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। कालुआ ताजबीन मिन अम्रिल्लाह, क्या तुम अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हो। किसने कहा, फरिश्तों ने। इब्राहिम के घर वालों, तुम लोगों पर तो अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं, और यकीनन अल्लाह नहायत काबिले तारीफ और बड़ी शान वाला है। तो मायूस ना हो, रिवायत में आता है कि अल्लाह को उस बंदे पे हैरत होती है जो अल्लाह से मायूस हो जाता है, हालांकि मदद बिल्कुल उसके करीब होती है। तो आप इस वक्त, आप और मैं, चलिए 3-4 सेकंड का स्ट्रेच ले, कोई ऐसी बात जिसको आप और सोच चुके हैं कि ये नामुमकिन है, उसको जहन में लाएं और इस आयत पे गौर करते हुए कहें, ए अल्लाह मैं आज भी तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, मेरा ईमान है कि तू ये काम कर सकता है। कोई बीमार है तो उसकी सेहत सोच लीजिए, कोई परेशान है उसको उस परेशानी से निकालें, लेकिन जो नहीं करना वो मायूस नहीं होना। कभी ना सोचें कि ये काम जो आज तक नहीं हुआ ये आज के बाद नहीं होना। फिर जब इब्राहिम की घबराहट दूर हो गई और औलाद की बशारत से इनका दिल खुश हो गया, तो उन्होंने कौम लूत के मामले में हमसे झगड़ा शुरू किया। हकीकत में इब्राहिम बड़ा हलीम और नरम दिल शख्स था और हर हाल में हमारी तरफ रुजू करता था। आज आपको हैरत नहीं हुई हजरत इब्राहिम का किस्सा सुन के? हर पारे में अल्लाह ने ऐसा जिक्र खैर उनका रखा। और देखिए, हलीमी और नरम दिली इख्बात मांग लें अल्लाह से। हम यहाँ अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह हम तेरे कलाम की महफिल में बैठे हैं, रोजे की हालत में, बेहतरीन महीना चल रहा है, ए अल्लाह हमें हलीमी दे दे, हमारे दिल नरम कर दे, हमारे अंदर आजजी डाल दे। हम कभी दूसरों को हकीर ना जाने, हम सबसे ज्यादा अगर कमजोर और गुनाहगार समझें तो अपने आप को समझें। आखिरकार हमारे फरिश्तों ने उनसे कहा, इब्राहिम इससे पास आ जाओ, तुम्हारे रब का हुक्म हो चुका और अब इन लोगों पर वो अजाब आकर रहेगा जो किसी के फेरे से नहीं फिर सकता। और जब हमारे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, इनकी आमद से वो घबरा गए और दिल तंग हुए और कहने लगे, आज बड़ी मुसीबत का दिन है। क्यों? फरिश्ते इंसानी रूप में आए थे, खूबसूरत रूप था, तो हजरत लूत को खौफ लगा अपनी कौम से कि ये तो इनके साथ बुराई का इरादा करेंगे। इन मेहमानों का आना था कि इनकी कौम के लोग बेइख्तियार इनके घर की तरफ दौड़ पड़े। पहले से वो ऐसी ही बदकारियों के खूब घर थे। लूत अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, भाइयों ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा तर हैं, कुछ खुदा का खौफ करो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे जलील ना करो, क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं? उन्होंने जवाब दिया, तुझको तो मालूम ही है तेरी बेटियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं। याद रखिए, हराम की लत पड़ जाए तो हलाल में कशिश नहीं रहती। जब फितरत के रास्ते को तोड़ेगा इंसान तो फितरी रास्तों में लज्जत नहीं होती। कौमे लूत इसका मुंह बोलता सबूत दिखती है। और तू ये भी जानता है कि हम चाहते क्या हैं? ढीठपन। ऐसे काम करने के बाद जुर्रत बहुत मिल जाती है। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि तुम्हें सीधा कर देता, या कोई मजबूत सहारा ही होता कि इसकी पनाह ले लेता। यानी बेबस हो गए, सुन के नहीं दे रहे। तब फरिश्तों ने इससे कहा, ए लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तेरा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, बस तू कुछ रात रहे अपने अहलो याल को लेकर निकल जा, और देखो तुम में से कोई शख्स पीछे पलट कर ना देखे। वरना क्या होगा? बचपन में क्या पढ़ा हुआ कहानियों में, पत्थर के इन आयतों पे पहुंच के मुझे वो बचपन की स्टोरीज के वो गदले गदले सफे होते थे याद आ जाते हैं। पीछे मुड़कर देखा फिर वो पत्थर के बन गए। वो बात सच थी कि नहीं, लेकिन एक बात सच है, ऐसे ही दोनों को जोड़ देती हूँ। पीछे कौन मुड़ के देखता है जिसको किसी चीज की मोहब्बत होती है ना? आज भी हम जब पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं ना, और पीछे मुड़ना दुनिया की तरफ देखना, हमें आगे देखना चाहिए आखिरत। जो पीछे मुड़ते हैं ना, पत्थर ही हो जाता है। जैसे नूह के बेटे ने कहा, सावीला जबले, मदहप्रस्त होता है। आप देखिए, पत्थरों की मोहब्बत इंसान को पत्थर करती है। लकड़ी क्या है? फर्नीचर क्या है? डायमंड क्या है? पत्थर है। तो पत्थरों में रहने वाले फिर पीछे ही मुड़ मुड़ के देखते हैं। अल्लाह ताला हमें आगे देखने वाला बनाए। मगर तेरी बीवी साथ नहीं जाएगी। अब जहां से अल्लाह का बेलाग असूल देखिए और तकदीर के फैसलों पे देखिए, नबी नहीं बचा सके अपने बेटे को, और अब नबी नहीं बचा सकेंगे अपनी बीवी को। क्यों? क्योंकि इस पर भी वही कुछ गुजरने वाला है जो इन लोगों पर गुजरना है। इनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है। सुबह होते हुए अब देर ही कितनी है। क्या गुजरा होगा जब शरीक हयात शरीक मिशन ना रहे? तो ऐसे ही होता है। लिखिए, नबी की बीवी क्यों ना बन जाए एक औरत? अगर अपना ईमान नहीं है और उस मिशन से प्यार नहीं है, नहीं बचेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां आपसे पूछा करती थी। हजरत आयशा ने पूछा एक मौके पे, अल्लाह के नबी, कल क्यामत के दिन इतने मुश्किल वरहले आ रहे हैं, तो क्या आप मुझे याद रखेंगे? आप तो मुझसे इतना प्यार करते हैं। क्या कहा कि आयशा, हाँ मैं तुझे याद रखूंगा, पर मैदान हशर में तीन मुकाम ऐसे आएंगे, ला यस्कुरु अहदुन अहदा, कि जहां कोई एक दूसरे को याद नहीं रखेगा, मैं भी तुझे नहीं याद रखूंगा। और उनमें से आप सभी जानते ही हैं वो मोड़ कौन से है, इंदल मीजान, जब नेकियां बतियां तुल रही होंगी, जब सहीफे बट रहे होंगे, और जब पुल सरात से गुजरे होंगे। तो उन वक्तों के लिए कुछ तैयारी कर लें। किसी का हसब और नसब काम नहीं आएगा। हाफिज बेटे तभी काम आएंगे जब आपके अपने अंदर खूबियां होंगी। इसी तरह से बाकी लोगों की नेकियां आपको मुझे फायदा ही तब देंगी जब हम खुद भी नेकियां कर रहे होंगे।